प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 15 फरवरी 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन साथी का नाम है अरुण कुमार जो पटना बिहार से हैं। तरुण कुमार, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों अब एक दो छोटी छोटी सूचनाएं हैं। एक सूचना तो आप सबके लिए है जो मेरे प्रिय श्रोता हैं, और वह यह कि जो दूसरा मॉक टेस्ट है वो .com पर डाल दिया गया है, प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट जिसमें 50 प्रश्न हैं, तो आप वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मेरी गुजारिश है कि आप तो करें ही, और बल्कि उन स्टूडेंट्स को भी बताएं जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है या जो डेली ऑडियो नहीं सुनते हैं, ताकि उनको भी पता चल सके और वह भी इसका लाभ उठा सके। एकेडमी का उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा दें, तो उसके पहुंचाने की जिम्मेदारी आप पर भी थोड़ी बहुत बनती है मित्रों। और एकेडमी तो जितना कर सकती है अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार उतना कर ही रही है। मित्रों अब छोटी सी बात मैं अपने सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट से कहना चाहूंगा। मित्रों मैं समझ सकता हूं कि अब जैसे जैसे आप लोगों के भोपाल आने के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, आपकी जो मानसिक संरचना है वो थोड़ी थोड़ी बदल रही होगी। आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे जो इसकी बड़ी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उत्साह से भरे हुए होंगे। इसका मतलब है कि उनके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका कंपोनेंट काफी ज्यादा है। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम होगी। ज्यादा बड़ी संख्या तो उन स्टूडेंट्स की होगी जिनके मन में न जाने किस किस तरह की आशंकाएं घर कर गई होंगी, घूम रही होंगी। वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, जर्नी में क्या होगा, खाना कैसा मिलेगा, इंतजाम कैसा होगा, पता इस तरह की ढेर सारी आशंकाएं उमड़ घुमड़ रही होंगी। और मजेदार बात तो यह है कि बहुत से स्टूडेंट आप में से ही इस अपने निर्णय से के प्रति पछता भी रहे होंगे कि यार मैंने क्यों रजिस्ट्रेशन करा लिया, क्यों एडमिशन ले लिया। कुछ तो ये भी सोच रहे होंगे कि यार रजिस्ट्रेशन करा लिया था, कम से कम फीस ही नहीं जमा करते। यानी कि कुल मिलाकर यह कि उन्हें अब भोपाल आना एक बोझ सा लग रहा होगा, एक बेकार का काम सा लग रहा होगा। और हो सकता है कि दिमाग कुछ ऐसा सोचे भी कि यार कुछ ऐसा हो जाए, बात कुछ ऐसी हो जाए कि जाने से बच जाए। ऐसे भी लोग होते हैं, सबके अपनी अपनी मानसिकता होती है दोस्तों। ये हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और ऐसा होता है, कम वे सबके साथ होता है, किसी के साथ किसी मामले में नहीं होता तो दूसरे मामलों में हो जाता है, लेकिन होता है। तो इसे आप एक सामान्य प्रक्रिया मानकर चलिए। मैं जो यहां आपसे कहना चाह रहा हूं फ्रेंड्स वो ये कि अभी आप आशंकाओं से घिरे हुए हैं। वो डेफिनेटली जब हमारे अंदर आशंकाएं होती हैं तो हमारे एनर्जी को लो कर देती हैं। आशंका अपने आप में एक निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला तत्व मशीन है जो निगेटिव जनरेट करती है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी आशंकाओं पर थोड़ा सा ध्यान दें। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप केवल ध्यान दें। इसके बाद आपकी यात्रा संपन्न हो जाएगी। यात्रा ही संपन्न नहीं हो जाएगी बल्कि क्लासेस भी संपन्न हो जाएंगी, और क्लासेस कंप्लीट करके आप सब अपने अपने उन्हीं घरों में उन्हीं जगहों पर वापस लौट आएंगे जहां से आप आ रहे हैं। और लौटने के बाद फिर आप ये देखें कि दिमाग में जो आशंकाएं थीं उसमें से कितनी आशंकाएं आपकी सही साबित हुई। ये आपको करना चाहिए, यह बहुत अच्छा अभ्यास होगा। और फिर आपको लगेगा कि यार इसमें से तो कोई भी आशंका सही साबित नहीं हुई। और जैसे ही आपको लगेगा कि कोई आशंका सही साबित नहीं हुई तो हो सकता है कि आपके मन में यह विचार बैठे कि जो आशंकाएं हैं वो झूठी होती हैं, जो आशंकाएं हैं वो निराधार होती हैं। और अगर दो चार आशंकाएं सही भी साबित हो गई तो 95 और 97 के सामने 2-5 आशंकाओं की औकात ही क्या है। आपके पास पॉजिटिव फोर्स ज्यादा है ना, क्योंकि जो आशंकाएं सही साबित नहीं हो रही हैं उनको कौन सी वो शक्ति है जो सही साबित नहीं होने दे रही है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी। तो इसका मतलब है कि मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है तो मुझे अपने को आशंकाओं का गुलाम नहीं बनाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा निर्णय आपके जीवन के लिए होगा अगर आप ये ले सके तो। और ये बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, जब आप अपने को इस निर्णय के लायक बना सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है मेरे सभी सिक्स बैच के आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि वे इसका थोड़ा सा अनुभव करें। तो दोस्तों अब मैं आता हूं आज के न्यूज एनालिसिस पर। मित्रों न्यूज आपने सुनी है और उस न्यूज में सच पूछे तो सिविल सर्विस के लिहाज से एक तो बहुत ही जोरदार टॉपिक है और वो जोरदार टॉपिक वही है जो पिछले समय से काफी कुछ दिनों से चला आ रहा है, वो तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति जो अभी है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक डिसीजन में जो शशिकला जी थी उनको आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी पाया और फिर उन्हें 4 साल की सजा दे दी गई। अब और वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और 10 साल तक चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। हमारे जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 है उसमें ये एक प्रावधान है। तो ये मान करके चलिए कि कमोवेश अब 10 साल के लिए उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो लगभग ब्लॉक सा हो गया है। मित्रों अब मैं उसकी राजनीतिक स्थिति पर मैं नहीं जा रहा हूं, अखबारों में काफी कुछ आया हुआ है और उसके पीछे जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है वो तो गवर्नर से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं, न्यूज में भी बताया जा चुका है और अखबारों में भी लिखा गया है, तो उस पर बात करना अपने को दोहराना ही होगा। मैं यहां जो स्पेशली आपका ध्यान जो आकर्षित करना चाहूंगा मित्रों, उस पर जरा सा आप सोचिएगा। सिविल सर्विस में हर साल मेन्स एग्जामिनेशन में जुडिशरी पर क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। अब यहां थोड़ा सा इस बात पर गौर कीजिए कि शशिकला जी पर जो ये डिसीजन आया है, शशिकला जी और इस पूर्व मुख्यमंत्री जो स्वर्गीय जयललिता जी हैं, इन दोनों के मामले एक साथ चल रहे थे, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मामले हैं। अब आप देखिए कि ये जो मामला है ये अखबार इसे 21 साल पुराना लिख रहे हैं और रेडियो न्यूज में ये 19 साल पुराना मामला है ना। अब आप इसको कुछ भी समझ लीजिए, चलिए हम बीच का आंकड़ा ले लेते हैं, लगभग 20 साल पुराना मामला, अपने को बचाने के लिए लगभग शब्द का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लगभग 20 साल पुरानी घटना है, राइट। और ये जो आय से अधिक संपत्ति रखने का जो आंकड़ा है, याद रखिये 91 to 96 के बीच का है, इसी बीच की अवधि में आय से अधिक संपत्ति रखी गई। अब आप देखिए कि इसमें हो क्या रहा है, वक्त कितना लग गया, 20 साल, इतने महत्वपूर्ण मामले का फैसला होने में 20 साल लग गया। और मामला महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि ये मामला जिसके ऊपर है वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक बहुत बड़े राजनीतिक दल की लीडर हैं जयललिता जी, और उनकी सहेली शशिकला जो उनके राजनीतिक कामों में गतिविधि, मतलब उनकी सहेली है आप कह लीजिए, ये ड्यूरेशन है। इतने महत्वपूर्ण मामले को निपटने में, पूरी तरह से निपटने में 20 साल का समय लग गया, राइट। अब मित्रों ये जो 20 साल का जो समय लगा है, इस बीच में अब आप देखिए कि जयललिता जी नहीं रही, राइट। संपत्ति का जो मामला है वह 91 से 96 है और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 550% संपत्ति में वृद्धि हुई, तो ये तो केवल 96 का है, इसका मतलब है कि दोषी मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हां गड़बड़ियां की गई। तो अगर हम इसी को एक्सटेंड कर दें कि 96 के बाद भी उस तरह की गड़बड़ियां जारी रही होंगी, क्योंकि वो उस पद पर हैं, उस स्थिति में है कि वो कर सकते हैं भाई, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर अगर है तो, अगर कोई भ्रष्ट ही होना चाहे तो बहुत गुंजाइश है, चाहे वो सरकारी अफसर हो, कोई भी हो, गुंजाइश है। इसका मतलब है कि 20 साल तक उस राज्य की बागडोर, मतलब हर समय तो वो नहीं रही है चीफ मिनिस्टर, लेकिन काफी लंबे समय तक जो उस राज्य की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में रही, एक ऐसे लीडर के हाथ में उसकी बागडोर रही जिसे अंततः सुप्रीम कोर्ट दोषी पाता है। तो इस समय जो आर्थिक नुकसान हुआ होगा उसका आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब जयललिता जी नहीं है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 20 ईयर्स लग गए, टाइम को देखिए 20 ईयर्स लग गए। अगर इसका फैसला जल्दी हो जाता, चाहे वो दोष मुक्त ही हो जाती, तो कम से कम हमारी जो चेतना है वो स्पष्ट तो हो जाती, जनता के दिमाग में डाउट तो क्रिएट नहीं होता, वो क्रिएट हो गया। अब आप दूसरा इसका स्तर देखिए, मैं केवल एनालिसिस के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि कैसे चीजों को आप देखेंगे, और सिविल सर्विस में हो सकता है कि इन्हीं एंगल को लेकर के कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। दूसरा एंगल आप देखिए मित्रों, अब हम जुडिशरी पर आते हैं। एक तो टाइम हो ही गया, दूसरा करप्शन का हो गया कि कितना नुकसान हो चुका है देश का। तीसरा जो इसका पॉइंट है फ्रेंड्स, वो ये है कि सेशन कोर्ट ने, जिला एवं सत्र न्यायालय जिसे हम कहते हैं, उसने इनको दोषी ठहराया। जयललिता जी और शशिकला जी को दोषी ठहराए कि आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। जेल भी गए। इसके बाद जब हाई कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट ने इन्हें दोषमुक्त कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि नहीं, ये साढ़े पांच, मतलब 540% है, 541%, तो मैं बोलचाल की भाषा में 550% कह रहा हूं। तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि नहीं नहीं उतना नहीं है, केवल 8% के करीब ज्यादा है, और 8% का ज्यादा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कानून के हिसाब से भी अगर किसी के पास 10% तक आय से अधिक संपत्ति है तो उसको अपराधी नहीं माना जाता है, मतलब उतना कैलकुलेशन में मान करके चलते होंगे कि गड़बड़ी हो जाती है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट को वो लगभग 8% के करीब लगा और नतीजा ये हुआ कि वो वहां से मुक्त हो गई। जब वहां से वो मुक्त हो गई तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उन्हें दोषी ठहराया है। अब आप देखिए कि सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया, जो भी तथ्य उनके सामने रहे होंगे उन्हीं तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट उन्हें दोष मुक्त करता है, और फिर उन्हीं तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट उन्हें दोषी पाता है। यानी कि जो सेशन कोर्ट का जो डिसीजन था उसी डिसीजन को वो पूरी तरीके से ओके कर देते हैं। तो तीन अदालतें और दो डिसीजन। यहां पर फिर से एक बात निकल कर आती है दोस्तों कि कोर्ट के डिसीजंस कितने परफेक्ट माने जाएं, कितने परफेक्ट माने जाएं, क्या किया जाए, क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जहां डिसीजंस में इतना ज्यादा अंतर न हो, इतना वेरिएशंस न हो। तो मित्रों ये अगला पॉइंट है जो मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि ये वो तथ्य हैं कि जब हम इनके बारे में इस लिहाज से सोचते हैं तो फिर चीजों की गहराई में जाने के बाद ही कुछ ऐसी चीजें पता लगती हैं कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, ये केवल तभी समझ में आती है, अदरवाइज बातें समझ में नहीं आती। तो मित्रों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज की बात थी और उसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसके बाद मित्रों अब मैं दूसरी खबर पर आ रहा हूं। एक खबर कल के अखबार में थी, वो मैं आप लोगों के सामने नहीं रख पाया था, वो था कर्नाटक के मामले को लेकर के। कर्नाटक विधानसभा ने, आपको मालूम होगा कि एक विधेयक पारित किया जिसमें उन्होंने कंबाला खेल को वैधानिक घोषित कर दिया। कंबाला बेसिकली वहां के जो बैल होती हैं उनका खेल है, उनका भी वो परंपरागत खेल है, जल्लीकट्टू की तरह ही है, तो उस पर भी प्रतिबंध लग गया था। लेकिन चूंकि तमिलनाडु में भी जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध था तो विधानसभा ने अपना विधेयक पारित करके उसे अब वैध बना दिया है। तो उनकी देखा देखी फिर कर्नाटक ने भी यही कदम उठाया, क्योंकि कर्नाटक में भी फिर इस कंबाला की मांग को लेकर के आंदोलन होने लगे थे। तो ये आपकी जानकारी के लिए एक कंटेंट के रूप में है कि कैसे एक राज्य का प्रभाव डेफिनेटली दूसरे राज्य पर पड़ेगा ही, और कैसे समाज में एक, हमारे समाज और संविधान में एक संघर्ष की सी स्थिति दिखाई दे रही है। दोस्तों एक और जो खबर है वो आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे, नो डाउट कि रेडियो न्यूज में तो वो चीजें नहीं आएंगी क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी से संबंधित है, और वो है इन्फोसिस को लेकर। इससे पहले आपने प्राइवेट कंपनी में टाटा एंड सन्स में देखा था, जबकि साइरस मिस्त्री को हटाया गया था, कारपोरेट है वो। अब दूसरा कारपोरेट इन्फोसिस को देखिए कि इन्फोसिस के जो नारायण मूर्ति जी हैं, जो चेयरमैन है, संस्थापक चेयरमैन है नारायण मूर्ति, उन्होंने एक टिप्पणी की, और खासकर टिप्पणी इसलिए कि इन्फोसिस के जो सीईओ हैं विशाल सिक्का, और उनके जो फाइनेंस के जो सीईओ, फाइनेंस के जो हेड थे, उनको अभी बहुत ज्यादा रकम दी गई। सीएफओ कहा जाता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ राजीव बंसल। राजीव बंसल को बहुत ज्यादा पैसा दिया गया, विशाल सिक्का जी की भी जो सैलरी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। और उसको लेकर के जो नारायण मूर्ति हैं उन्होंने एक सवाल उठाया कि भाई ये पब्लिक का पैसा है क्योंकि वो शेयर होल्डर्स का पैसा है और उसको इस तरीके से क्यों दिया जा रहा है, ये कहां नियम में है किस तरीके से। तो वो एक विवाद का विषय बन गया है और उस विवाद को लेकर के हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान ने अपने कल के संस्करण में इस पर एक एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है। मैं आपको एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं मित्रों, ये मैं इसलिए आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप, जैसे हमें गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, दूसरे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, तो आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में एक तरीके से तुलना कर सकें। मतलब हम मान के चलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ ही अच्छा हो रहा है या गवर्नमेंट सेक्टर में सब कुछ अच्छा हो रहा है या गवर्नमेंट में सब कुछ खराब है, प्राइवेट में सब कुछ खराब है, तो हमारे पास एक यथार्थवादी दृष्टि होनी चाहिए कि रियलिटी क्या है। तो यहां आपको इसमें एक प्राइवेट सेक्टर की रियलिटी दिखाई देगी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण आप देख रहे हैं कि भारत में जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बहुत अनाप शनाप हुए हैं, खासकर कॉरपोरेट के हायर लेवल पर तो बहुत ही हाई सैलरीज हो गई हैं। वो कितनी उचित हैं, क्या होना चाहिए, ये एक सवाल है और यदि इस पर सिविल सर्विस में पूछ लिया जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स जो पब्लिक सेक्टर है यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं उनमें भी जब सैलरी की बात आती है या गवर्नमेंट सर्वेंट जब अपना दावा पेश करते हैं पे कमीशन के सामने कि हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए, तो उस दावे का एक बहुत बड़ा आधार यह होता है कि भाई प्राइवेट कंपनी में तो इतना है तो आप हमें इतना कैसे देंगे, हमारा भी कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। इसलिए एक इंपॉर्टेंट इश्यू है ये भी जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। मित्रों अब मैं कुछ और न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा, उनका एनालिसिस का वक्त तो नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है कल के इंडियन एक्सप्रेस में डी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कि कैसे हम डी ग्लोबलाइजेशन के दौर में गुजर गए हैं, ये गुजर रहे हैं। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है मित्रों, इसका मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको हिंदी में भी इसे प्रोवाइड करूं उसका सार। दैनिक जागरण में भरत झुनझुनवाला जी का एक लेख है जो इंडियन इकोनॉमी को है उसके वर्तमान स्वरूप को लेकर के है, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है मित्रों, ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए। इसके बाद फिर दोस्तों एक सोलर एनर्जी को लेकर के, सोलर पावर को लेकर के जो रेलवे ने कहा है कि वो सोलर अपने यहां सोलर पावर स्थापित करना चाह रही है और अपने लिए, मतलब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीन एनर्जी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो दोस्तों न्यूज़पेपर के बारे में बस इतना ही, अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं रितेश साहू, शुभम गुप्ता इलाहाबाद से, रुपेश शर्मा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, राहुल उपाध्याय न्यू दिल्ली से, सौरभ पाठक आप भी न्यू दिल्ली से, आलोक कुमार वाराणसी से और संगीता चौधरी, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।